सुखी स्वस्थ रहना सभी के जीवन का लक्ष्य होता है, पर सही माने में सुखी कैसे हों, सही माने में स्वस्थ कैसे हों, इसे समझना और सचमुच सही माने में सुखी स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। जो अच्छा चिकित्सक होता है वह रोग के ऊपरी ऊपरी लक्षणों का उपचार करके नहीं रह जाता, रोग के कारण के जड़ों तक जाकर उसका उन्मूलन करता है ताकि रोग का नामो निशान न रहे, वही अच्छा चिकित्सक होता है। जीवन रोगों से भरा हुआ, दुखों से भरा हुआ, और इन दुखों के ऊपरी ऊपरी कारणों के निवारण में ही सारा जीवन बिता दें तो हम सही माने में सुखी नहीं हुए, सही माने में स्वस्थ नहीं हुए। हमारे दुखों के कारण और उसकी जड़ें कहाँ है, वहां पहुंचकर उसका उन्मूलन करना ही अपने आप को सचमुच निरोगा बनाना है, स्वस्थ बनाना है। 10 दिनों के अभ्यास में ये विद्या पूरी तरह पकड़ में आ जाए ये आशा नहीं की जा सकती, पर इसकी एक झांकी तो सामने आई। बहुत काम करना होगा, अभी तो आरंभ ही हुआ है। सारे दुखों की जड़ें हमारे भीतर और उनके उपचार भी हमारे भीतर ही, बाहर नहीं। मन स्वस्थ हुए बिना हम सही माने में स्वस्थ नहीं हुए, सही माने में सुखी नहीं हुए। और मानस के ऊपरी ऊपरी हिस्से को ही सुखी बना के रह गए, स्वस्थ बना के रह गए, तो भी सही माने में सुखी नहीं हुए, सही माने में स्वस्थ नहीं हुए। अंतर मन की गहराइयों तक रोग का नामो निशान न रह जाए, दुखों का नामो निशान रह जाए, इसलिए प्रयत्न करना है। और विपश्यना यही काम करवाती है। 10 दिन के अनुभव ने एक बात तो अच्छी तरह समझाई ही होगी, कि रोग सांप्रदायिक नहीं हुआ करता, रोग का इलाज भी सांप्रदायिक नहीं हुआ करता। रोग सार्वजनिक होता है, उसका इलाज भी सार्वजनिक होता है। किसी को मलेरिया हो जाए तो उस मलेरिया के रोग, उस व्यक्ति को जिसे मलेरिया का रोग हुआ है, क्या नाम देंगे उसे? ये हिंदू मलेरिया हुई, या मुस्लिम मलेरिया हुई, कि क्रिश्चियन मलेरिया हुई, कि बौद्ध मलेरिया हुई? मलेरिया मलेरिया है, रोग है, सार्वजनिक है। एक हिंदू को भी हो सकता है, बौद्ध को भी हो सकता है, जैन को भी हो सकता है, ईसाई को भी हो सकता है, एक भारतीय को भी हो सकता है, एक बर्मी को भी, अमेरिकन को भी, रूसी को भी, चीनी को भी, काले को भी, गोरे को भी, पुरुष को भी, नारी को भी, रोग है। इस रोग का निदान करके जब दवा दी जाती है, कोई डॉक्टर उसे कुनेन देता है, तो क्या नाम देंगे उस कुनेन का? कहाँ उसे हिंदू कुनेन कहेंगे, कि बौद्ध कुनेन कहेंगे, कि जैन कुनेन कहेंगे? कुनेन कुनेन है, सार्वजनिक रोग का सार्वजनिक इलाज है। अपने यहां भारत में धर्म का यही स्वरूप, शुद्ध धर्म का यही स्वरूप कभी उजागर हुआ, बड़ा कल्याणकारी सिद्ध हुआ। जहां इसे सांप्रदायिक रंग देने लगे वहां इसे दूषित कर लिया, इसका लाभ लेना भूल गए। 10 दिनों की साधना से इतनी बात तो सबके समझ में आई ही होगी कि हमारे मानस में जब विकार जागता है तो हम रोगी हो ही जाते हैं, व्याकुल हो ही जाते हैं। कोई विकार जागे, राग जागे, द्वेष जागे, क्रोध जागे, ईर्ष्या जागे, भय जागे, वासना जागे, अहंकार जागे, कोई विकार जागे, प्रकृति हमें दंड देना शुरू कर देती है, तत्काल दंड देती है। प्रकृति इस बात को नहीं देखती कि जिस व्यक्ति ने ये विकार जगाया है अपने मन में, ये अपने आप को हिंदू कहता है कि बौद्ध कहता है कि जैन कहता है कि ईसाई कहता है, ये व्यक्ति इस प्रकार की वेशभूषा पहनने वाला है कि उस तरह की वेशभूषा पहनने वाला है, ये व्यक्ति इस तरह के कर्मकांड करने वाला है कि उस तरह के कर्मकांड करने वाला है, ये व्यक्ति इस प्रकार की दार्शनिक मान्यता मानने वाला है या उस प्रकार की दार्शनिक मान्यता मानने वाला है। प्रकृति इस बात को नहीं देखती, विकार जगाया है दंड मिलेगा ही, व्याकुलता आएगी ही, दुखी हो ही जाएगा। तो सार्वजनीन बात हुई ना, जो रोग सार्वजनीन है उसका इलाज सार्वजनीन ही हो सकता है, सांप्रदायिक नहीं। भारत की यही सबसे बड़ी विशेषता रही कि भारत ने धर्म का शुद्ध स्वरूप जाना, अपने देश के लोगों के लिए उसका उपयोग किया और विश्व भर के लोगों को यह बहुत बड़ी भेंट दी। सार्वजनीन रोग है, विकार जगा के व्याकुल हो जाना सार्वजनीन रोग है। उन विकारों की वजह से और भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक रोग, मानसिक रोग होना, वो तो उसका बढ़ा हुआ रूप है, पर रोग की जड़ तो विकार है, सार्वजनीन है। और इसका ये सार्वजनीन इलाज, जहां रोग जाग रहा है, जिन कारणों से जाग रहा है, वहां तक पहुंच होनी चाहिए। विकार कहां जागा? जहां शरीर में कोई संवेदना हुई, सुखद हुई, दुखद हुई, और उसके प्रति प्रतिक्रिया शुरू हो गई, राग की हुई, द्वेष की हुई, तो रोग का उद्गम हो गया, वही रोग का उद्गम है। वहां तक हम पहुंचे ही नहीं, और ये माने कि हम उसको जड़ों से निकाल लेंगे तो अपने को धोखे में रख कर सारा जीवन बिता देंगे। भारत ने विश्व को ये दिया, जड़ों तक पहुंचो, अपने रोग की जड़ों तक पहुंचो, विकारों के जड़ों तक पहुंचो। जहां विकार आरंभ होते हैं वहीं उनका उन्मूलन करो, और उन्मूलन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, केवल उसे साक्षी भाव से देखो, तटस्थ भाव से देखो, प्रकृति अपना काम करेगी, निसर्ग अपना काम करेगा, धर्म अपना काम करेगा, अपने आप उन्मूलन हो जाएगा। जैसे जैसे आदमी भीतर जाके इस सच्चाई को देखना सीखने लगता है, उसमें पकने लगता है, तो बात समझ में आती है कि भाई ये तो सार्वजनिक रोग का सार्वजनिक इलाज है, इसे किसी संप्रदाय के नाम पर क्यों जोड़ें? जैसे ही जोड़ देंगे धर्म को किसी संप्रदाय के नाम के साथ, वैसे ही धर्म दूषित हो जाएगा, बलहीन हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, उससे जो लाभ होने वाला है उस लाभ से वंचित हो जाएंगे। उसके साथ जो विशेषण लगा दिए, चाहे उसे हिंदू कहें, बौद्ध कहें, जैन कहें, ईसाई कहें, मुस्लिम कहें, सिख कहें, चाहे जिस नाम से पुकारे, वो नाम प्रमुख हो जाएगा, वो विशेषण प्रमुख हो जाएगा, धर्म कौन हो जाएगा? देश को ही नहीं, सारे विश्व को इस बात की जरूरत है आज कि इस बात को समझे, स्वीकार करे कि धर्म का अपना अस्तित्व होता है, इन सारे विशेषणों को दूर करके अपना एक अस्तित्व है, बड़ा महत्वपूर्ण अस्तित्व है। वो शक्ति जिसकी हुकूमत सारे विश्व पर चलती है, जो अणु अणु को धारण करती है, अणु अणु जिसे धारण करता है, उसे धर्म कहा जाता था। उसे समझें, सांप्रदायिक जंजालों से अपने आप को बाहर निकाले तो देखेंगे विपश्यना किस प्रकार कल्याणकारिणी साबित हुई जा रही है। जहां इसे किसी संप्रदाय के साथ जोड़ दिया फिर इसकी दुर्गति हो जाएगी, फिर इससे जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिलने से वंचित हो जाएंगे। सीधी सीधी बात, मेरे भीतर विकार जागा और मैं रोगी हुआ, मेरे भीतर विकार जागना बंद हो गया, मैं निरोगा हो गया। मैं अपने आप को हिंदू कहता रहूं, मुसलमान कहता रहूं, जैन कहता रहूं, ईसाई कहता रहूं या और किसी नाम से पुकारता रहूं, मैं निरोगा हो गया, चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया, मैं भला हो गया, मैं अपना भी भला करने लगा, औरों का भी भला करने लगा। मैं विकार पर विकार जगाता चला जाऊं, उस विकार के मारे अपने भीतर दुख पर दुख जगाता चला जाऊं, तो ये दुख अपने तक सीमित नहीं रखता, कभी औरों को बांटता हूं, सबको दुखियारा बनाता हूं। फिर मैं अपने आप को हिंदू कहता रहूं, बौद्ध कहता रहूं, जैन कहता रहूं, चाहे जिस नाम से अपने आप को पुकारता चला जाऊं, मैं एक रोगी हूं। दुखियारा हूं, व्याकुल हूं, अपने आप को भी दुखी बनाता हूं, व्याकुल बनाता हूं, औरों को भी दुखी बनाता हूं, व्याकुल बनाता हूं। धर्म का मुझसे दूर परे कभी संबंध नहीं है। मानस विकारों से विकृत हो और आदमी अपने आप को धर्मवान मानता चले, इससे बड़े दुर्भाग्य की और क्या बात होगी। महज इसलिए कि ये कर्म कांड पूरा कर दिया या वो कर्म कांड पूरा कर दिया, ये दार्शनिक मान्यता मान ली या वो दार्शनिक मान्यता मान ली, ये पर्व त्योहार मान लिया कि वो पर्व त्योहार मान लिया, ये व्रत उपवास कर लिया कि वो व्रत उपवास कर लिया, अगर विकार पर विकार जगाए जा रहा हूं तो यही मानना आवश्यक है कि मैं धर्मवान नहीं हूं, मेरा धर्म का दूर परे से भी संबंध नहीं है। मैं अमुक संप्रदायवादी व्यक्ति हूं, इस संप्रदाय का कर्मकांड करता हूं, तो इस संप्रदाय का व्यक्ति हूं, उस संप्रदाय का कर्मकांड करता हूं, उस संप्रदाय का व्यक्ति हूं, धर्म का मुझसे कोई लेन देन नहीं। यूं धर्म का अपना अस्तित्व जिस दिन देश में जागेगा, विश्व में जागेगा, उसकी अपनी एक महत्ता, स्वतंत्र महत्ता, सचमुच है ही उसकी स्वतंत्र महत्ता, किसी संप्रदाय के साथ उसका लेन देन नहीं। विकार जगा के रोगी हुआ कि धर्म से च्युत हुआ, निर्विकार होकर के सुखी हुआ, निरोगा हुआ कि धर्मवान हुआ, जितना जितना विकारों से मुक्त हुआ उतना उतना धर्मवान हुआ, उसके जीवन में धर्म बोलने लगेगा, उसकी वाणी में धर्म बोलेगा, उसके शरीर के कर्मों में धर्म बोलेगा, उसके सारे वातावरण में धर्म बोलेगा, स्वयं सुखी हो जाएगा, औरों के सुख का कारण बन जाएगा। सबसे बड़ी औषधि है धर्म, हमारे सार्वजनीन रोगों की सार्वजनीन औषधि है। किसी संप्रदाय के साथ जोड़ते ही ये औषधि काम करना बंद कर देगी, इसका सत्य स्वरूप शुद्ध स्वरूप रहे हमेशा। अपने भीतर इस बात को जांचते रहें कि मैं रोगी हुआ तो इसका इस संप्रदाय से या इस दार्शनिक मान्यता से क्या लेना देना, मैंने विकार जगाया इसलिए रोगी हुआ, और ये विकार जगाने का स्वभाव मेरा किस कदर बढ़ते ही जा रहा है, मेरा रोग बढ़ते ही जा रहा है, इस स्वभाव शिकंजे में जो गुलाम हो गया इसके बाहर कैसे निकलूं। सारी विद्या इस गुलामी के बाहर निकलने की विद्या, भीतर जाता है साधक गहराइयों से तो देखता है कोई विकार जगा ले, जैसे ही मन में कोई विकार जगाएगा, मन और शरीर का इतना गहरा संबंध है, एक दूसरे को कितना प्रभावित करते हैं, जैसे ही मन में विकार जगाएगा शरीर में किसी न किसी प्रकार की जीव रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी और उससे एक प्रकार की संवेदना होगी। क्रोध जगाया और उस क्रोध से जो संवेदना मेरे शरीर में पैदा हुई, अब वो संवेदना मुझे मजबूर करेगी कि मैं और क्रोध जगाऊं, क्योंकि वो संवेदना अपने आप में इतनी दुखदायी होगी, इतनी व्याकुलता पैदा करने वाली होगी कि अब जो क्रोध जगा रहा हूँ वो अपनी इस दुखद संवेदना पर क्रोध जगा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से यूँ लगता है कि बाहर की किसी घटना पर, व्यक्ति पर, स्थिति पर क्रोध जगा रहा हूँ, क्रोध जग रहा है। अब ये जो मैंने जीव रसायन पैदा किया और उसकी वजह से जो दुखद व्याकुलता पैदा करने वाली संवेदना आई, इस पर क्रोध जगा रहा हूँ। क्रोध जगाया, उस रसायन का प्रवाह और तेज हुआ, वो प्रवाह और तेज हुआ, मैंने और क्रोध जगाया, क्रोध और जगाया और रसायन, अरे दुष्चक्र चल पड़ा ना। और वो दुष्चक्र चलाए ही जाते हैं, घंटों उसी में बहते चले जाते हैं, तो घंटों दुखों में बहते चले जाते हैं। क्रोध जैसा क्रोध, वैसी वासना, वैसी भय, वैसी ईर्ष्या, जो विकार जगाएंगे, एक प्रकार का रसायन जगाएगी, उससे एक प्रकार की संवेदना होगी, उससे फिर उसी प्रकार का विकार जगाएंगे, और यह दुष्चक्र बढ़ता ही जाएगा। उस महापुरुष ने यही बात देखी, गहराइयों में जाकर के इस प्रकृति के, नियति के, निसर्ग के कानून को अच्छी प्रकार समझा, कैसे हमारा दुख आरंभ होता है और कैसे बावलेपन में, अनजान अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, अविद्या की अवस्था में हम उसका संवर्धन ही किए जा रहे हैं, संवर्धन के ऐसा एक स्वभाव हम बनाए जा रहे हैं, उस स्वभाव के गुलाम हुए जा रहे हैं। क्रोध जगाने का स्वभाव तो क्रोध ही जगाने का स्वभाव बढ़ाते जा रहे हैं, ईर्ष्या जगाने का, भय जगाने का, वासना जगाने का बढ़ाए जा रहे हैं। कैसे तोड़े इस दुष्चक्र को? तो ये विद्या, क्रोध जागा है और उसके साथ साथ एक संवेदना जागी है। केवल इतना पर स्वीकार करें, क्रोध जागा है। किस बात को लेकर जागा है उससे लेन देन नहीं, सच्चाई ये है, मानस में इस क्षण क्रोध जागा है और शरीर में ऐसी संवेदना हो रही है। बार बार इन संवेदनाओं को देखने का जो अभ्यास करते हैं वो इसलिए कि जीवन में उतरे और उसका लाभ उठाएं। हम केवल शिविरों में आकर हमने संवेदना देख ली, दुखद संवेदना आई तो हाय रे, मरा रे, या घंटे भर क्यों बैठा दिया रे, पांव टूटने लगा रे, और जहाँ धारा प्रवाह मिली बस आनंद आया, रे बहुत आनंद आया, साधना बड़ी अच्छी हुई, उस व्यक्ति ने विपश्यना समझी नहीं, वो विपश्यना का लाभ नहीं उठा सकता। संवेदना चाहे जिस प्रकार की है, हम उसे तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से, उसके अनित्य स्वभाव को समझते हुए, बिना प्रतिक्रिया किए हुए देख पाते हैं कि नहीं। वो जितना जितना अभ्यास पुष्ट होगा जीवन में देखेंगे उसका लाभ आने लगा। क्रोध आया है इसको स्वीकार कर रहे हैं, जो संवेदना आई है चाहे जितने दुखद हो इसको स्वीकार कर रहे हैं और इसे देख रहे हैं, देखते हैं कब तक रहती है। अरे इतनी बार देखा है, इस तरह के न जाने कितने प्रकार की संवेदनाएं आती हैं जाती हैं, उत्पन्न होना, नष्ट होना इसका स्वभाव है, देखते हैं दुष्चक्र टूटने लगा। जिन संवेदनाओं की वजह से विकार बढ़ाए जा रहे थे, जिन विकारों की वजह से संवेदना बढ़ रही थी और हमारा दुख बढ़ रहा था, दुख चक्र बढ़ते जा रहा था, अब अपने आप उस पर रोक लगने लगी, हम दुखों के बाहर आने लगे क्योंकि विकारों के बाहर आने लगे। अब इसमें हिंदूपने की क्या बात आई, इसमें बौद्धपने की कि जैनपने की कि ईसाईपने की कि मुस्लिमपने की, बात क्या आई इसमें? सीधी सी बात है, हर व्यक्ति अपने भीतर क्रोध जगाएगा, मानस में क्रोध जगाएगा, विकार जगाएगा, शरीर पर संवेदना होगी और वो अपने पागलपन में फिर उसको बढ़ाता चला जाएगा और उसे देखेगा तो उसके बाहर निकल जाएगा। हिंदू हो तो निकल जाएगा, बौद्ध हो तो निकल जाएगा, जैन हो तो निकल जाएगा, सुखी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। धर्म का ये शुद्ध स्वरूप लोगों तक पहुँचे, बड़ा कल्याण होगा। आज जिस जंजाल में केवल देश ही नहीं सारे विश्व के लोग उलझे पड़े हैं और धर्म के नाम पर उलझे पड़े हैं, उसके बाहर निकलना सीखेंगे। तो आए हो यहां पर तो यह संदेश लेकर जाना चाहिए। जो लोग इस बात का लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, हमारा धर्म खतरे में, इसलिए दूसरे धर्म को खत्म करना है क्योंकि दूसरे धर्म वाले हमारे धर्म को खत्म कर रहे हैं, उनको ये होश आए, मेरा धर्म उसी क्षण खतरे में पड़ गया जब मैंने अपने भीतर विकार जगाया। मेरा धर्म खतरे में मेरी वजह से पड़ता है, किसी दूसरे की वजह से पड़ नहीं सकता। जैसे ही मैंने अपने मन की समता खोई, संतुलन खोया, उसकी निर्विकारता खोई, खतरे में आ गया मैं। मुझे वो खतरे से बचना है, अपने धर्म को बचाना है, इसमें दो मत नहीं। कहाँ बचाएं अपने धर्म को? अपने भीतर बचाना है। जहाँ विकार जाग रहे हैं वहाँ उन विकारों को, वो हमारे बड़े दुश्मन हैं जो हमारे धर्म को खत्म कर रहे हैं, उन विकारों को दूर करके हम अपने धर्म को बचाएं, बड़ा कल्याण होगा। ये बारी बारी बातों को धर्म मान करके किस उलझन में पड़ गए, किस जंजाल में पड़ गए। हमने अपनी क्या हालत बना दी, अपने देश की क्या हालत बना दी, सारे विश्व की क्या हालत बना दी। ये संदेश लेकर के जाना है, भारत में ही नहीं सारे विश्व में शुद्ध धर्म का ये संदेश फैले। सारे लोग रोगी हैं, सारे लोग दुखियारे हैं, क्योंकि सारे लोग विकार जगाते हैं। और दुर्भाग्य है कि विकारों से बाहर निकलने का सही तरीका नहीं, ऊपर ऊपर से अपने मन को इधर उधर भरमा लें और समझे कि हम विकार मुक्त हो गए, तो ऊपर ऊपर के मानस को ही हमने डाइवर्ट कर दिया, पलायन कर गए सच्चाई से। भीतर तो उसी प्रकार उबल रहे हैं, विकारों पर विकार जगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रतिक्षण शरीर में कोई न कोई संवेदना जागती है, दुखद हो सुखद हो, और प्रतिक्षण हम प्रतिक्रिया किए जा रहे हैं, राग के करते हैं, द्वेष के करते हैं। भीतर ही भीतर तो हम रोगी हैं, भीतर ही भीतर हमारा मानस विकारों से भरा है, और ऊपर ऊपर से हमने अपने आप को इस भुलावे में, इस छलना में, इस धोखे में डाल करके ये मान लिया कि मैं तो निर्विकार हूँ, मेरे में विकार नहीं जागते, मैं निरोगा हूँ, मुझ में कोई रोग नहीं है। बहुत बड़ा धोखा है। इसे अंदर से लोग देखना सीखें तो ये सारे जंजाल बाहर के धर्म के नाम पर जो चलते हैं, जिनकी वजह से इतना विग्रह, इतनी अशांति, इतनी बेचैनी होती है, उससे छुटकारा मिले। चिकित्सक हो लोगों के शारीरिक और मानसिक रोगों के, ये जो भीतर का बहुत गहरा रोग है, चिकित्सा इसकी भी होनी है, क्योंकि इसके चिकित्सा हुए बिना ऊपर ऊपर की हज़ार चिकित्सा कर लें, सही चिकित्सा नहीं हुई। तो ऊपर ऊपर की चिकित्सा करनी ही पड़ेगी, शारीरिक रोग का भी कोई इलाज करना पड़ेगा, मानसिक रोग का कोई इलाज करना पड़ेगा, पर अंतर मन की गहराइयों में जो रोग के कीड़े लगे हुए हैं, उनको दूर करने का काम, इसे अपनी चिकित्सा में कैसे जोड़ेंगे, कैसे लोगों तक ये संदेश पहुंचाएंगे, रोगियों तक ये संदेश पहुंचाएंगे। जो खटिया पर पड़ा है वही रोगी नहीं है, जो अपने को ऊपर से स्वस्थ माने जा रहा है बहुत बड़ा रोग, पहुंचे उसके पास ये संदेश कि तू रोगी है भाई, देख तो सही भीतर, देख तो सही विकार पर विकार जगाया जा रहा है, कितना रोगी है, और देख इस रोग के बाहर निकलने का तरीका है, बड़ा वैज्ञानिक तरीका है। किसी संप्रदाय में दीक्षित होने की ज़रूरत नहीं तुझे। आज अपने को हिंदू कहता है, कल बौद्ध कहने लग जाए कुछ नहीं बनेगा, आज बौद्ध कहता है, कल मुस्लिम कहने लग जाए कुछ नहीं बनेगा, वैसा का वैसा रहेगा। तो कुदरत के कानून को समझ, विश्व के विधान को समझ, रित को समझ, अरे यही धर्म है। अंतर्मुखी होकर अपने भीतर सच्चाई को देख, ये संदेश भारत में फैले, भारत के बाहर सारे विश्व में फैले, बहुत कल्याण होगा, बहुत मंगल होगा। कल्याण होना ही चाहिए, मंगल होना ही चाहिए, संसार के दुखियारों का दुख दूर होना ही चाहिए, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। Those of you who have attended this Dhamma seminar, the practice of Vipassana for 10 days, and now the discussions as to how to remain healthy, happy, harmonious in life. Must have understood that the illness, the malady is universal. And the remedy of this universal malady has to be universal. It can't be sectarian. When someone is suffering from malaria, what label will you give to that malaria? Will you call it a Hindu malaria or a Muslim malaria or a Jain malaria or a Buddhist malaria? Malaria is malaria. Anyone belonging to any sect can become a victim of malaria. And when you give a medicine, say a quinine to this person, what nomenclature, what label are you going to put to this quinine? Will you say the Hindu quinine or Muslim quinine or Christian or Buddhist? Kunin is kunin. Similarly, with the practice of 10 days, exploring the truth within yourself, the truth of the interaction of mind and matter, a constant interaction of mind and matter going inside, you will have understood that everyone is a sick person, constantly generating क्रेविंग अवर्शन, क्रेविंग अवर्शन एंड सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफाइलमेंट्स ऑफ द माइंड एंड बिकमिंग मिजरेबल. एवरीवन इज मिजरेबल, सिक, नॉट हेल्दी. द डिफाइलमेंट दैट वन जनरेट्स, what nomenclature will you give to it? What label will you attach to it? If one generates anger, how can you say this is Hindu anger or Muslim anger or Christian or Jain or a Buddhist anger? Anger is anger. It is a universal illness, universal malady. The remedy has to be universal. No sectarian remedy is going to help you. And here, the great scientist of this country discovered this remedy. Universal remedy. Just observe the reality within yourself, the origin of your misery, origin of your sickness, where it arises. As soon as you generate any defilement in the mind, the illness has started. This is the origin. Any defilement, anger, hatred, ill will, passion, fear, ego, any defilement. And how this defilement arises. Going deeper, as you did practicing for 10 days at least, you had an outline of the reality within yourself. As soon as there is a sensation on the body, this type or that type, pleasant or unpleasant or neutral, one starts reacting to this sensation. And as soon as the reaction starts, a misery has started, the illness has started. This is the root of all the miseries. The sensations and the reaction to the sensations. If one does not go to that root and take out the cause of your suffering at the root level, one cannot come out of illness. As soon as you generate any defilement, as you go deep inside and if you continue to practice, at a deeper level, as you get more and more established in observing the truth within yourself, you will find that as soon as you generate any defilement in the mind, there is a biochemical reaction immediately. There is a secretion of some biochemistry with the flow of the stream, of the blood. And due to that, there is a sensation. And if there is an anger and a sensation has come, that sensation is always very unpleasant. Then you react to this sensation, you generate more anger. You generate more anger and more the flow is there of this biochemistry. And more this flow and more the anger, this vicious circle starts. And for hours together you keep on rolling in anger, you keep on rolling in misery, you keep on rolling in your illness. This great scientist of the world, he discovered this reality, went deep inside and found out how it originates and how out of ignorance, out of madness, one keeps on multiplying one's misery. One allows oneself to become a slave of this reaction habit pattern and also found out how to come out of it. As soon as anger arises, a particular sensation has arisen on the body, just accept the fact, at this moment, anger has arisen in my mind. Not the object of the anger. Anger is anger. Anger has arisen in my mind and let me see what sensation on the body. Observing the sensation, because you practice for these 10 days and you will continue to practice later on, you will notice that no sensation is eternal. It arises sooner or later, passes away. Let me see how long it remains. And you observe objectively, the vicious circle is broken. If you used to roll in anger for 1 hour, now you find within half an hour, within 10 minutes, within 5 minutes, within 2 minutes, you are coming out of this vicious circle. Now anybody can do this. A Hindu can do this, a Muslim can do this, a Christian, a Buddhist. What makes the difference? Because the universal remedy can be applied to one and all. Everyone can practice without converting oneself from one organized religion to another organized religion. Keep Dhamma free from these organized religions. Then only Dhamma will give its real benefit. Dhamma independent of these organized religions, the sects, will be understood better by the people and will be applied better in life. as soon as it gets connected with any organized religion, then that organized religion will become more important. Dhamma will take secondary place. A Hindu Dhamma, or Buddhist Dhamma, or Christian Dhamma, or Jain Dhamma, then Hindu will become more important, Christian will become more important, Muslim will become more important, Buddhist will become more important, Dhamma will be secondary. If Dhamma remains Dhamma, universal, then one will start giving the real importance that is to be given to Dhamma and will start practicing it in life without converting oneself from one organized religion to another organized religion. These organized religions, the different sects, and because of their controversy, the entire humanity is suffering, not only in this country, everywhere around the world. I would like you all to take this message, not only to the people of India, but the suffering people everywhere. The message of Dhamma, Dharma, universal Dharma. Keep it away from these organized religions, the law of nature. As soon as I defile my mind, the nature punishes me. Anyone who defiles the mind, nature will punish. One is bound to become miserable as soon as one generates a defilement, a negativity in the mind. One may keep on calling oneself a Hindu or a Muslim or a Christian or a Buddhist, makes no difference. One may perform this rite or that ritual, makes no difference. One may agree to this philosophical belief or that philosophical belief, makes no difference. As soon as one generates any defilement in the mind, nature does not discriminate. Dhamma does not discriminate. Dhamma punishes us then and there. And as soon as one comes out of the defilement, Dhamma starts rewarding us. If the mind is free from these defilements, a pure mind by nature is full of love, full of compassion, full of goodwill. And when I have love, compassion, goodwill, I feel so peaceful, so harmonious, so healthy. This happens to everyone. One may keep on calling oneself a Hindu or a Muslim or a Jain or a Christian, makes no difference. If the mind is pure, free from defilements, one is a healthy person. One is a good person. When the mind is unhealthy, one keeps on harming oneself and one keeps on harming others. When the mind is healthy, free from defilements, one keeps on helping oneself and helping others. This is the message of Vipassana. Let everybody live a life of good health, freedom from defilements, purity of mind, with good qualities, to keep oneself always happy and healthy, and help others to live the life of happiness and health. May this message go around the world. May all of you enjoy the best fruits of pure Dhamma. May all of you come out of your defilements to enjoy real peace, real harmony. And may you all become instrument for the spread of Dharma, the pure Dharma, in helping people to come out of their misery and live a happy, harmonious life. May there be real peace, real happiness, real peace, real happiness. May all be happy, be peaceful, be liberated. Savat sav mangalam bhavat sav mangalam bhavat.